पाठ 13 अध्याय 13। जबकि तोरह क्लास बाइबल की पहली 5 पुस्तकों का अध्ययन करने के बारे में है, तोरह ये शायद हमारे लिए सबसे अधिक लाभदायक भी है जब हम हमारे दिन और उम्र में हमारे लिए इसकी प्रासंगिकता को समझ सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करें। कई उपदेशकों और शिक्षकों द्वारा यह कहा गया है कि हम आज इतिहास के एक बहुत ही विशेष समय में हैं, कि हम सदियों पुरानी बाइबल भविष्यवाणियों के सच होने के चश्मदीद गवाह हैं और वे सही हैं। लेकिन इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह महसूस करना अच्छा है कि हर पीर ही ने भविष्य सूचक घटनाओं को घटित होते नहीं देखा है। इसलिए कोई यह सोचेगा कि जब परमेश्वर की कोई भविष्यवाणी सच होगी तो परमेश्वर के लोग इससे बहुत उत्साहित होंगे। फिर भी कलीसिया और पृथ्वी की अधिकांश यहूदी आबादी ने अधिकांशतः सभी भविष्य सूचक इतिहास की 2 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का स्वागत किया है, एक यहूदी राष्ट्र के रूप में इसराइल का पुनर्जन्म और यरूशलेम का नियंत्रण यहूदी लोगों को लौटाना एक उदासीन जमाई के साथ। मुझे लगता है कि ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हमें यह एहसास नहीं है कि भविष्यवाणी की पूर्ति हर दिन नहीं होती है।
वास्तव में 70 ईस्वी में यरूशलेम के पतन के साथ सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए बाइबल में भविष्यवाणी की गई घटनाओं का खुलासा एक विस्तारित अवधि के लिए निष्क्रिय हो गया। 18 शताब्दियों से भी अधिक समय से बाइबल में उल्लिखित एक भी भविष्य सूचक घटना घटित नहीं हुई है। ओह, उस दिन की तैयारी के लिए दुनिया में बहुत कुछ चल रहा था जब परमेश्वर एक बार फिर भविष्यवाणी की घड़ी को शुरू करेंगे, सभी चीजों के अंत की उल्टी गिनती शुरू करेंगे जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन लगभग 1900 वर्षों तक परमेश्वर के लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता लगाया जा सके कि बाइबल के इतिहास में वे कहां खड़े थे। हालांकि आज हमारे जीवन में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे चारों ओर देखने पर आपको लगेगा कि कुछ भी सामान्य नहीं हो रहा है।
70 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश के बाद अगली भविष्यवाणी की गई घटना जो घटित होनी थी वह उन लोगों की जिन्हें रोमन फैलाव या रोमन निर्वासन कहा जाता है। यहूदी लोग विश्वासियों और गैर विश्वासियों अपने बैग पैक करके रखे हुए थे और यरूशलेम के रोमन विनाश के बाद के पहले कुछ दशकों में उस वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब उन्हें इस शहर में रहने से मना कर दिया था। लेकिन दूसरी शताब्दी ई के गैर यहूदी कलीसिया और मसीहाई यहूदियों ने सोचा कि ईसा मसीह निश्चित रूप से किसी भी क्षण वापस आएंगे। इसी तरह पारंपरिक यहूदियों ने सोचा कि उनकी मातृभूमि में वापसी और उनके मंदिर का पुनर्निर्माण निकट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लोग इसराइल के परमेश्वर की उपासना करते थे और तीसरी शताब्दी में रहते थे वे बेचैन हो रहे थे और इस बात से बहुत चिंतित थे कि परमेश्वर को अपने लोगों को उनकी पवित्र भूमि पर वापस बुलाने में इतना समय क्यों लग रहा है। लेकिन उनकी चिंताएं कम नहीं हुई थीं। 4 शताब्दी में ईसा मसीह का पूरी तरह से गैर यहूदी कलीसिया अभी भी ईसा मसीह की वापसी का इंतजार कर रहा था और हर देश के यहूदी जहां वे प्रवास कर गए थे आश्चर्यचकित थे कि क्या शायद वह समय करीब आ गया है जब वे घराना वापस जा सकते हैं, जैसा कि 5वें-6वें वालों ने किया। 7वीं और 8वीं शताब्दी, लगभग 17वीं शताब्दी तक, जब ईसाई धर्म ने एक भयानक मोड़ ले लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हम निश्चित रूप से इसराइल की अपनी मातृभूमि में वापसी के बारे में उन भविष्यवाणियों को गलत तरीके से पायरेच रहे होंगे। कलीसिया ने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में इसराइल वापस नहीं लौटने वाला था, कम से कम वहां यहूदी इसराइल नहीं बनने वाला था, और बाइबल में जिस इसराइल की बात की गई लोग और भूमि दोनों केवल प्रतीकात्मक थे। किस बात का प्रतीक? गैर यहूदी कलीसिया नई मुख्यधारा की मान्यताएं जो उभरी और जो आज ईसाई जगत पर हावी हैं 17वीं शताब्दी में शुरू हुई और ये मान्यताएं नए उत्तराधिकारी के दृढ़ विश्वास पर केंद्रित थीं कि इसराइल को कलीसिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसराइल को यहोवा ने पूरी तरह से और स्थायी रूप से अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने उसके पुत्र को अस्वीकार कर दिया था। अब्राहम और मूसा के माध्यम से इब्रानियों को भूमि और छुटकारा के सभी वादे प्राप्त हुए थे और उन्हें अन्य जाति कलीसिया को सौंप दिया गया था, कलीसिया को अब अब्राहम से वादा किए गए सभी आशीष मिलेंगे। वे वादे जिनके बारे में हम अध्याय 12 के पहले कुछ पदों में पढ़ते हैं। दूसरी ओर इज़राइल को वे सभी श्राप मिलेंगे जो मूसा के नियमों की अवज्ञा से आएंगे। आइए 20वीं सदी की ओर तेजी से आगे बढ़ें। ओह ह्यूस्टन, हमारे पास एक समस्या है, क्योंकि 1948 में इज़राइल अंततः उसी स्थान पर लौट आया जहां से उन्हें निर्वासित किया गया था। यहूदी राष्ट्र का पुनर्जन्म हुआ ठीक वैसे ही जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, और 1967 में यरूशलेम को यहूदी लोगों के नियंत्रण में वापस कर दिया गया जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, और इसलिए यीशु द्वारा नियुक्त किया गया था। और इन चौंका देने वाली घटनाओं पर कलीसिया की क्या प्रतिक्रिया रही है? सामान्य तौर पर कुछ भी नहीं। 17वीं सदी के कलीसिया अगुओं की विश्वास की कमी से पैदा हुए वही प्रतिस्थापन धार्मिक पद आधुनिक कलीसिया सिद्धांत के साथ पूरी तरह से जुड़े, और अंतर्निहित पद आज भी दुनिया भर के अधिकांश चर्चों में अभी भी पढ़ाए जा रहे हैं। यह ऐसा है मानो अब्राहम से किए गए वादों पर दावा करने के लिए इज़राइल की वापसी कभी नहीं हुई। आप जानते हैं, ईसाइयों को बचपन से ही सिखाया गया है कि यीशु के दिनों में उन भयानक यहूदियों के प्रति निराशा व्यक्त करें और जानबूझकर अपना सिर हिलाए जिन्हें लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा के आगमन को देखने का अकल्पनीय सौभाग्य प्राप्त था, लेकिन फिर उनके द्वारा इसे अनदेखा कर दिया गया। यहूदी परंपराएं इतने अंधे हैं कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को यह दावा करने के लिए मार डाला कि वह वास्तव में कौन था।
खैर, आज हम कलीसिया के लोग उस लंबे समय से प्रतीक्षित के साक्षी हैं जब इसराइल अपने निर्वासन से वापस आएगा, अपनी भूमि विरासत को पुनः प्राप्त करेगा और एक राष्ट्र के रूप में पुनर्जन्म लेगा। हमने टीवी पर देखा कि इजरायली सेना ने केवल 6 दिनों में 5 शक्तिशाली अरब सेनाओं के गठबंधन को हरा दिया, और 1967 में 70 ईस्वी के बाद पहली बार यरूशलेम को अपने पवित्र शहर के रूप में पुनः प्राप्त किया। भविष्यवाणी हुई है, यहूदी वापस आ गए हैं, और अधिकांश भाग में हमारी ईसाई परंपराओं के कारण कलीसिया इसके प्रति पूरी तरह से अंधा हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि जब से परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, तब से यीशु मसीहा के आने तक 1900 साल से कुछ कम समय था, और उस दिन से 1900 वर्ष से थोड़ा समय था जब परमेश्वर ने अपने लोगों को भूमि से बाहर निकाल दिया था, लेकिन वादा किया था कि वह उन्हें वापस लाएगा उस दिन तक जब तक कि वे उस वादे पर हमेशा के लिए दावा करने के लिए वापस नहीं आए। शायद हमें ध्यान देना चाहिए, बाइबल में इन घटनाओं के कई उल्लेख हैं, लेकिन मेरे लिए उनमें से किसी में भी परमेश्वर के उस अजीब भविष्यवक्ता यहेजकेल द्वारा कही गई बातों का प्रभाव नहीं है। यहेजकेल उन यहूदियों में से एक था जिसे नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम में उसके घराना से निकाल लिया था और बेबीलोन में निर्वासित कर दिया था, जब बेबीलोन साम्राज्य ने 797 ईसा पूर्व यहूदा पर विजय प्राप्त की थी। तो चलिए तो
रासा घूम कर देखते हैं, और साथ ही उत्पत्ति 12 और 13 में अब्राहम से किए गए वादों और यहेजकेल के 36 और यहेजकेल के भविष्य सूचक कथनों के बीच बिंदुओं को जो रें 37वां और फिर वह सब जो हमारे समय की घटनाओं से जुड़ा है।
यहूदी लोगों की अपनी मातृभूमि में अंतिम वापसी की भविष्य सूचक कहानी पर रहकर एक वापसी 18वीं सदी के भविष्यवाणी के पूरा होने के अंतराल के बाद आर्मागेडन की उलटी गिनती की बहाली का प्रतीक है।
यहेजकेल 36 और 37 पर हैं।
बहुत खूब। मैं चाहता हूं कि जॉर्ज लूकास या स्टीवन स्पीलबर्ग उन दो अध्यायों में जो कुछ भी शामिल है उस पर एक फिल्म बनाए। पहली बात जो मुझे कहने की जरूरत है वह यह है कि यहेजकेल में जिस घटना के बारे में बात की गई है वह बेबीलोन से यहूदियों की वापसी के बारे में नहीं है। यहेजकेल के इन दो अध्यायों का अध्ययन करने में ही कुछ सप्ताह लग जाते हैं, तो मैं इन पदों को समझने के लिए बस कुछ महत्वपूर्ण कुंजियां बताना चाहता हूं।
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वाक्यांश इसराइल का पूरा घराना का अर्थ है, जिसे कभी कभी इसराइल के दोनों घराने या यहां तक कि सभी इसराइल के रूप में भी अनुवादित किया जाता है। यहेजकेल के वचन लगभग 25 वर्षों की अवधि में लिखे गए थे, जो 597 ईसा पूर्व में बेबीलोन द्वारा यहूदा पर विजय प्राप्त करने के कुछ समय बाद शुरू हुए थे। जिस भाग को हम देख रहे हैं वह बाद के वर्षों में लिखा गया था, लगभग 130 साल पहले। आपको यह जानना होगा कि इब्री एक विभाजित राष्ट्र थे। पवित्र भूमि के उत्तरी क्षेत्र में 10 गोत्र रहता था और दक्षिण में 2 गोत्र समूह रहता था। वास्तव में उत्तरी क्षेत्र एक राज्य था, दक्षिणी क्षेत्र से अलग और अलग प्रत्येक क्षेत्र अपने ही राजाओं द्वारा शासित करते थे। मैं स्पष्ट कर दूं, इसराइल का एकीकृत राज्य जिस पर दाऊद और फिर सुलेमान ने शासन किया, उत्तरी क्षेत्र को कई नामों से विभाजित किया गया, उत्तरी साम्राज्य इसराइल का राज्य, और कुछ दस्तावेज इसे यूसुफ के राज्य के रूप में भी संदर्भित करते हैं। लेकिन अधिकांश भाग के लिए, जैसा कि उस युग के लिए विशिष्ट था, इसे उस गोत्र के नाम पर बुलाया गया था जो उस क्षेत्र में प्रमुख थी। एप्रैम की गोत्र लगभग 900 ईसा पूर्व यहेजकेल के समय, लगभग 590 ईसा पूर्व तक, उस उत्तरी क्षेत्र को एप्रैम साम्राज्य कहा जाता था, एक ऐसा नाम जिससे अधिकांश लोग परिचित नहीं है। हालांकि दक्षिणी साम्राज्य वह है जिसके बारे में हम अधिक जानते हैं, इसे यहूदा कहा जाता था। अब बाइबल की भाषा में उत्तरी राज्य को इज़राइल का घराना, या अधिक सटीक रूप से एप्रैम का घराना भी कहा जाता था, और दक्षिणी राज्य को यहूदा का घराना कहा जाता था। ये दो घराना, एप्रैम का घराना और यहूदा का घराना, मिलकर बने जिसे बाइबल इज़राइल का पूरा घराना कहती है। अब लगभग सभी बाइबल में एप्रैम का घराना कहने के बजाय इज़राइल का घराना कहा जाएगा, जो भ्रमित करने वाला है। दरअसल गृह युद्ध के तुरंत बाद कुछ वर्षों तक उत्तरी राज्य को दर्शाने के लिए इज़राइल का घराना शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन जल्द ही इसका प्रयोग बंद हो गया। बात यह है कि आज इज़राइल के दो घरानों में से केवल एक ही अपने वतन लौटा है, यहूदा। यहूदा उस चीज से बना है जिसे आज हम यहूदी कहते हैं। इसराइल का वह दूसरा घराना, जिसमें इसराइल की 12 गोत्रियों में से 10 शामिल थे, अभी तक इसराइल में वापसी में भाग नहीं लिया है। यहेजकेल 37 का वह भाग जहां वह दो छरियों के बारे में बात कर रहा है, एक एप्रैम के लिए और एक यहूदा के लिए वापस एक साथ रखी जा रही है, उस समय का जिक्र है जब इसराइल के दोनों घराना पवित्र भूमि पर लौट आएंगे और फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन आज तक केवल एक घराना, यहूदा का घराना, वापस आया है। सामान्य प्रश्न यह है, ठीक है, क्या यहेजकेल वास्तव में इब्रानियों के उनके बेबीलोनियन निर्वासन से वापसी के बारे में नहीं है? नहीं, क्योंकि वह निर्वासन केवल यहूदा का निर्वासन था। इज़राइल का दूसरा घराना एप्रैम अश्शूर द्वारा जीत लिया गया था, लोगों को निर्वासित कर दिया गया और उन 120 देशों में तितर बितर कर दिया गया जिन्होंने असीरियन साम्राज्य का गठन किया था। वह घटना यहेजकेल से लगभग 65 पहले घटी थी और मूल रूप से एक पहचाने जाने योग्य लोगों के रूप में उनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। दूसरे वचनों में यहेजकेल 36 और 37 में बताई गई घटनाएं बेबीलोन से वापसी के बारे में नहीं थी, बल्कि अभी घटित होने वाली है। फिर भी, और जल्द ही तीन भाग की शाम की क्लास में हम इस विषय पर गहराई से विचार करेंगे, एप्रैम की वापसी होने लगी है। बमुश्किल से 3 महीने पहले मार्च 2005 में इजरायली सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन लोगों की पवित्र भूमि पर वापसी को मंजूरी दे दी थी जो कहते हैं कि वे यहूदी नहीं हैं लेकिन वे इजरायली हैं। अर्थात इसराइल में प्रवास करने की इच्छा रखने वाले ये लोग इसराइल की उन लंबे समय से खोई हुई 10 गोत्रों में से कुछ हैं। इसराइल का दूसरा घराना एप्रैम, एक बार फिर यहूदी केवल गोत्र या साम्राज्य यहूदा के हैं, जो मूल रूप से बिन्यामिन और यहूदा की दो गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एप्रैम अन्य 10 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। लंबे समय से यह माना जाता है कि वे लुप्त और अज्ञात हैं और वे यहूदी नहीं हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से इजरायली हैं। तो जिन घटनाओं के बारे में हमने अभी यहेजकेल 36 और 37 में पढ़ा है, वे अभी घटित हो रही हैं। डरावना है ना?
आज हम उस भूमि पर एक गंभीर बहस के दौर में हैं, जहां यहूदी लौट आए हैं और जिसमें एप्रैम अभी आना शुरू कर रहा है, और वह तर्क किसी दिन दुनिया को अंतिम युद्ध में झोंक देगा, जहां यहेजकेल के निम्नलिखित अध्याय हमें ले जाएंगे, हालांकि हम फिलहाल वहां नहीं जाएंगे। कुछ लोग यह तर्क करना चाह सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को हमेशा के लिए जो भूमि दी थी उसकी सटीक सीमाएं क्या थीं, लेकिन मेरी बात सुनो, कम से कम इसमें उस जमीन का हर इंच शामिल है जिस पर फिलिस्तीनी अब अपना दावा करते हैं। आप देखिए, जिस क्षेत्र में अब्राहम उस समय खड्डहा था जब परमेश्वर ने उससे यह वादा किया था, वह ठीक उसी के मध्य में है जिसे आज आमतौर पर वेस्ट बैंक कहा जाता है, या सबसे हास्यास्पद संभव वचनों में कब्जा किया गया क्षेत्र। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि जब भी मैं हमारे राष्ट्रपति या हमारे विदेश मंत्री, मेरे विचार से वे सभ्य और नेक इरादे वाले लोग हैं, को जबरदस्त राजनीतिक दबाव के माध्यम से पश्चिमी तट को इजरायली के कब्जे से अलग करने और उस भूमि को फिलिस्तीनियों को उनके स्वयं के संप्रभु राष्ट्र के रूप में देने की बात करते हुए सुनता हूं, तो अमेरिका के लिए मेरे मन में कितना भय होता है, और वह भी शांति की आशा में। हमारे पास कलीसियाओं का एक बड़ा
गठबंधन भी है जो अरबों और फिलिस्तीनियों के लिए सहिष्णुता, निष्पक्षता और दया के सिद्धांत के आधार पर यही मांग कर रहा है। ये वही भूमि है जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था और उसके वंशजों के लिए सदैव के लिए अलग रखा था, और परमेश्वर ने चेतावनी दी है कि जो लोग उसके वंशजों के खिलाफ जाते हैं, जो अब्राहम को शाप देते हैं, वह उनके खिलाफ आएगा और न्याय करेगा, वे शापित होंगे।
बाइबिल के अनुसार प्रत्येक संकेत यह है कि वास्तव में कोई इसराइल पर उस भूमि के एक हिस्से को आत्मसमर्पण करने का निर्णय लेने के लिए मजबूर करने जा रहा है, जो अब्राहम वाचा के केंद्र में है। फिलहाल दुख की बात है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार होगी जो शांति के लिए राष्ट्रपति बुश के रोड मैप को प्राप्त करने के लिए उसे मजबूर करेगी, और दुनिया हमारे समय में जिस शांति की कामना करती है वह बहुत ही कम समय के लिए घटित होगी। लेकिन समस्या यह है कि दुनिया के साथ शांति का मतलब है परमेश्वर के साथ युद्ध। आप देखिए, परमेश्वर का विभाजन, चयन करना और चुनाव करने का पैटर्न कभी खत्म नहीं होता। हम परमेश्वर के उन परिभाषित और विभाजित करने वाले क्षणों में से एक में रह रहे हैं, और उस विभाजन का हिस्सा और परमेश्वर द्वारा उपयोग की जाने वाली पृथक्करण प्रक्रिया हमारे प्रत्येक प्रश्न के एक ही उत्तर पर आधारित है। इसराइल पर आप कहां खड़े हैं, और ये पसंद है या नहीं, हमें एक या दूसरे पक्ष को चुनना होगा। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और उसके वाचाओं का सम्मान करना और उसके साथ शांति रखना चुन सकते हैं, या हम दुनिया और धर्मत्यागी कलीसिया के साथ खड़े हो सकते हैं। इसराइल के साथ खड़ा
होना परमेश्वर के साथ खड़ा
होना है।
इसराइल के साथ खड़ा न होना दुनिया के साथ खड़ा होना है,
परमेश्वर के खिलाफ है। आइए अब पद 14 से 18 को दोबारा PRH कर अध्याय 13 को समाप्त करें। उत्पत्ति 13, 14 से 18 पर हैं। अब जब मैंने आपको यह प्रदर्शित कर दिया है कि इन पदों के वचन अभी भी प्रभावी हैं और सभी चीजों के अंत तक प्रभावी रहेंगे, मुझे आशा है कि आप उनका महत्व समझेंगे। जो भूमि परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाई वह सदैव के लिए बिना शर्त इसराइल की रहेगी। अब वास्तव में अब्राहम कहां था जब उसे हर दिशा में चारों ओर देखना था, और वह सब उसके वंशजों का था। उत्पत्ति अपोक्रिफोन उसे रामत हजोर पर रखता है, जो बेथेल से लगभग 5 मील उत्तर पूर्व में है। यह मध्य इसराइल का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3,300 फीट है। इस स्थान से आज भी पश्चिम में भूमध्य सागर और पूर्व में जॉर्डन राज्य तक देखा जा सकता है। अब पद 17 कहता है कि अब्राहम को भूमि की लंबाई और चौड़ाई में चलना था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे यह दिया। पूरी तरह से इसका क्या मतलब है? क्या वह सचमुच जो कर रहा था उसे रोकना चाहता था और भूमि के प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करें, या यह महज किसी चीज का प्रतीक था या कोई इब्रानी मुहावरा था? टारगम जोनाथन एक प्रारंभिक इब्रानी टिप्पणी का कहना है कि जो हो रहा था वह यह था कि अब्राहम चजकाह कर रहा था। चजकाह उस युग की एक व्यापक व्यवस्था प्रथा थी और बहुत पहले और मध्य पूर्व की विभिन्न गोत्रों और लोगों में इसका उपयोग किया जाता था। यह मिस्रवासियों के साथ साथ हित्तियों द्वारा भी जाना जाता था और उनके प्राचीन दस्तावेजों में इसकी पुष्टि की गई थी। और अवधारणा यह थी कि जब संपत्ति का एक टुकड़ा अर्जित किया जाता था तो नए मालिक को पूरी संपत्ति की परिधि के आसपास चलना पड़ता था, जो कि यदि आप चाहें तो उसके क्षेत्र को चिह्नित करने का प्रतीक था। नोट: जब तक नए मालिक ने ऐसा नहीं किया तब तक स्थानांतरण पूर्ण नहीं था। कुछ संस्कृतियों में राजा या शासक को उस क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता को फिर से स्थापित करने के लिए समय समय पर अपने राज्य की परिधि पर चलने की भी आवश्यकता होती है।
अब परमेश्वर अब्राहम से ऐसा क्यों करवाएगा? अब्राहम की खातिर और उन कई लोगों की खातिर जिन्होंने संभवतः पूछा, आप चजकाह क्यों कर रहे हैं? मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अब्राहम ने मित्र नहीं बनाए, क्योंकि उनके द्वारा चिह्नित क्षेत्र की रूपरेखा के भीतर कई पहले से ही स्थापित राज्य और शहर राज्य थे, और मुझे संदेह है कि वे इस विदेशी द्वारा अपनी भूमि के स्वामित्व की प्रतीकात्मक घोषणा से बहुत खुश नहीं थे। लेकिन एक और कारण भी है, हम पुराना नियम का शेष भाग देखने जा रहे हैं, और सामान्य तौर पर संपूर्ण बाइबल, जहां पूरे तोरह में मानव निर्मित सरकारी प्रणालियां मौजूद हैं, जब परमेश्वर और मनुष्यों के बीच लेन देन होता है तो परमेश्वर इसमें शामिल लोगों को अपने सिस्टम के व्यवस्था, अध्यादेशों और रीति रिवाजों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। अब्राहम पूरी तरह से परिचित और सहज रहा होगा जब यहोवा ने उससे कहा था कि जाओ और जमीन पर चलो, क्योंकि तब चीजें इसी तरह से की जाती थी। वास्तव में ये शायद बहुत बेचैन करने वाला होता और अब्राहम में बहुत संदेह पैदा करता यदि परमेश्वर ने इसकी आज्ञा न दी होती। ऐसा ही होगा, हम एक कार खरीदने गए, हमने सभी कागजी कार्रवाई पूरी की, मेज पर एक चेक रखा और रीलर ने कहा, आपको या मुझे किसी भी चीज पर हस्ताक्षर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस कार ले लो और जाओ और हम बस ले लेंगे, एक दूसरे को इसके लिए वचन देते हैं। हमें ऐसा करने में काफी असुविधा होगी, एक कारण से ऐसा नहीं है, आम तौर पर सभी पक्ष इसे कानूनी बनाने के लिए कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करते हैं। कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर रीलर से आपके पास कार के स्वामित्व के स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा करता है। अब्राहम के साथ भी यही हुआ। उस दिन के कानूनी रिवाज के अनुसार भूमि की परिधि पर चलना कानूनी रूप से संपत्ति के हस्तांतरण को पूरा करता है, और इस तरह दोनों पक्षों को लेन देन पर पूरी तरह से समापन का एहसास होता है।
अध्याय का अंत अब्राहम के हेब्रोन जाने और वहां एक वेदी बनाने के साथ होता है। वेदी का निर्माण उस क्षेत्र पर एक ईश्वर या दूसरे के अधिकार की घोषणा करने की प्रथा थी।